आप सबका इस नंदोत्सव त्योहार के लिए स्वागत है। आप में से शायद प्राय सभी ही कल जन्माष्टमी के महोत्सव के लिए भी आए थे और कृष्ण जन्म का अवश्य आप सबने आनंद उठाया। रात को 12 बजे ठीक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे माता देवकी के गर्भ से, और जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उस समय माता यशोदा गहरी नींद में थी, नंद महाराज भी नींद में थे, इसलिए बात गोकुल में थोड़े समय तक फैली नहीं। जब सब जाग गए और नंद महाराज को पता चला कि यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है तो बड़े आनंद की अनुभूति की, और उस समय नंद महाराज ने सारे गोकुल को निमंत्रण दिया कृष्ण भगवान के जात कर्म संस्कार या उसके पहले जन्म दिवस के लिए। नंद महाराज और माता यशोदा ये नहीं जानते थे कि जो उनका पुत्र है वो स्वयं भगवान है। उनका प्रेम इतना तीव्र था कि वो अपने बच्चे को साधारण बालक ही समझते थे। यह है भगवान की योग माया की शक्ति। अगर नंद महाराज और वसुदेव जान लेते कि उनका जो सुपुत्र है वो स्वयं भगवान है तो वात्सल्य भावना में मां का या पिता का प्रेम वो कृष्ण को नहीं दे सकते। उधर मथुरा में देवकी और वसुदेव को ये ज्ञात था कि उनका पुत्र साक्षात हरि या नारायण है, क्योंकि भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप प्रदर्शित कराया था और जब वसुदेव और देवकी ने हृदय से प्रार्थना की थी भगवान के प्रति तो उस समय भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया था, उनके पिछले जन्मों का इतिहास भी उन्हें बताया था और ये वरदान दिया था कि इस जन्म के बाद में तुम दोनों मेरे धाम में मेरे साथ में लौट कर आओगे। तो गोकुल में यशोदा और नंद बाबा इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे और नंद बाबा ने सोचा कि बहुत साल हुए, हम कितने सालों से एक पुत्र की इच्छा रख रहे थे लेकिन इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सारी इच्छाएं आज पूरी कर दी हैं। तो बड़े धूमधाम से कृष्ण भगवान के जन्म का महोत्सव मनाने की जो तैयारियां हैं वो चलने लगी। पहली बात तो यह है कि नंद उपनिषद और पुराण के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कराया, साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष में जो विद्वान थे ब्राह्मण उनको भी बुलाया। ये प्रथा है हमारे देश में कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर ब्राह्मण आकर उसके एक पंचांग को देखकर ये बताते हैं कि भविष्य में इस बच्चे के लिए क्या है, इसका भविष्य कैसे होगा। तो यशोदा और नंद बाबा ने भी यही चाहा, और यह भी एक प्रथा है कि माता पिता और सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने आप को स्वच्छ करने के पश्चात सजाते हैं धजाते हैं और बाद में ब्राह्मणों से सुनने आते हैं कि हमारे पुत्र का भविष्य क्या है। तो इस तरह से नंद महाराज और यशोदा माता ने भी सारे शुद्धिकरण के क्रियाएं करना आरंभ किया। हमारी जो वैदिक सभ्यता है ये बहुत प्रगतिशील है। आज हम इस वैदिक सभ्यता को भूल चुके हैं, लेकिन उस समय 5000 वर्ष पूर्व गोकुल के छोटे से गांव में अनपढ़ जो गोपियां थीं, वो भी इस वैदिक सभ्यता को अच्छी तरह से जानते थे। कैसे अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं, कैसे शुद्धिकरण किया जाता है इत्यादि। शास्त्र में बताया जाता है कि अगर हमारी कोई भूमि है तो समय ही उसको शुद्ध कर देता है। अगर हम तपस्या करते हैं तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, हम स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, किसी चीज को धोते हैं तो वो चीज शुद्ध हो जाती है, अगर हम ब्राह्मणों को का पूजन करते हैं, उनको दान देते हैं तो हमारा धन शुद्ध हो जाता है, अगर हम मन ही मन में संतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के शुद्धिकरण की क्रियाएं बताई हुई हैं। जब तक हम शुद्धिकरण की क्रियाएं नहीं करते हैं, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारा जन्म हो, हमारा धन हो, हमारा परिवार हो, हमारी भूमि हो, जो भी हो, जब तक वो अशुद्ध रहते हैं हमें पाप भुगतना पड़ेगा। इसलिए वैदिक सभ्यता में हर एक चीज के लिए शुद्धिकरण की क्रियाएं बताई गई हैं, और हमारे जन्म के शुद्धिकरण के लिए नाना प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, और ये ब्रजवासी गण भी इन संस्कारों को जानते थे, इनका महत्व जानते थे। लेकिन आजकल ये संस्कार हम भूल चुके हैं। हमारे देश की प्राचीन दो जो संस्कृति है उसको भूल चुके हैं। अभी सभी लोग केवल इंद्र तृप्ति और भोग चाहते हैं और कोई सभ्यता संस्कृति नहीं चाहते हैं। तो खैर, नंद बाबा और यशोदा माता ने ब्राह्मणों को बुलाकर सारे संस्कार किए, और नंद बाबा ने 20 लाख गायों का दान दिया। अभी इस अंक को सुनकर शायद हमें लगे कि ये दंत कथा है, माइथोलॉजी है, ये ठीक नहीं, सही नहीं हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि गोकुल में हजारों परिवार रहते थे और हर एक परिवार के साथ में हजारों गाय और गाय के बछड़े थे, और उनको संभालने के लिए कोई कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि गोकुल का नाम ही ऐसे आता है। गो का जो गायों का जो कुल है, जो घर है, धाम है, उसे गोकुल कहते हैं। जहां कृष्ण होंगे वहां तो गाय होने ही हैं। वैदिक सभ्यता तीन चीजों के ऊपर आधारित है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे आधुनिक काल में भी बहुत महत्व रखता है। और इन तीन चीजों को जब हम भूल जाते हैं तो हमारे समाज को हम नष्ट कर डालते हैं। पहली जो चीज है जिसके ऊपर हमारा समाज निर्भर है वो है भगवान। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में नहीं रखते हैं, जैसे कि वो भगवत गीता में समझाते हैं, हम नास्तिक समाज बन जाते हैं, और नास्तिक समाज में कोई भला नहीं हो सकता। नास्तिक समाज केवल नरकी अवस्था की ओर बढ़ प्रगति करते जाता है। दूसरी बात जिसके आधार पर वैदिक सभ्यता अवलंबित होती है वो है भूमि। भूमि अर्थात कृषि, एग्रीकल्चर। क्योंकि आखिर में जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हम फैक्ट्रियों के नट बोल्ट तो खा नहीं सकते, हमें खाना है तो केवल भूमि का उत्पादन खाना है। जो अनाज का उत्पादन होता है भूमि से, जो फल फूल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वही हम खा सकते हैं। फैक्ट्री का उत्पादन तो हम खा नहीं सकते। और तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है गाय, गोमाता। गोमाता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय जो है वो मां के समान है। वैदिक शास्त्र में बताया जाता है कि हमारे सात माताएं होती हैं, जो हमें जन्म देते हैं वो माता, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, पृथ्वी माता, धात्री और गोमाता। तो ये सात प्रकार की मां होती हैं जो हमारा पालन पोषण करती हैं। गोमाता हमें शुद्ध दूध देती हैं जिससे हमारा शरीर और मन शुद्ध और तंदुरुस्त बन जाता है। तो इन तीन चीजों पे वैदिक सभ्यता आधारित थी और गोकुल में भी हम देखते हैं कि ठीक ऐसे ही था। नंद बाबा और अन्य जो ग्वाल थे, गोप थे वहां पर, उनका धन केवल गाय थे। हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि केवल गाय रखने से आदमी कितना धनी बन सकता है। वैदिक सभ्यता में धन केवल पैसे के नोटों से नहीं जाना जाता था। वैदिक सभ्यता में धन की गणना गायों से की जाती थी क्योंकि गाय से दूध मिलता था, दूध से कितने सारे पदार्थ बन सकते थे, यज्ञ कर सकते थे। केवल गाय कृषि और भगवान पर आधारित होकर सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य समाज में हम कर सकते हैं। तो नंद बाबा ने इस प्रकार से गायों का दान दिया ब्राह्मणों को और इसके बाद में उन्होंने अनाज का धन भी दिया, दान भी दिया, कपड़ों का दान भी दिया। और जब सारे ब्रजवासियों को ये पता चला कि नंद बाबा और यशोदा माता के घर में अब एक बालक का जन्म हुआ है और वो भी पुत्र है, तो सारे ब्रजवासी गण बहुत खुश हो गए और सारे उस ओर निकल पड़े। सब जो गोप हैं उन्होंने नए नए सुंदर महंगे कपड़े पहने, अपने शरीर पर नाना प्रकार के आभूषण पहने और बड़े बड़े पगड़ियां पहन ली और बहुत ही आनंद से सारे गोपगण जो हैं नंद और यशोदा के घर की ओर चले। और जब गोपियां हैं उन्होंने सुना कि नंद बाबा के घर में पुत्र हुआ है तो वो भी नए नए अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहनने लगे। हालांकि वो साधारण गोपी और गोप थे, कोई धन की कमी नहीं थी उनके पास में, दूध दही मक्खन इत्यादि इतना हुआ करता था कि इसको देकर वो बदले में जो चाहिए वो ले सकते थे। उनके पास में हीरे थे, मोती थे, सोना था, जो चाहिए वो उनके पास में था। क्यों? केवल क्योंकि वो गाय की रक्षा करते थे। हमारे वैदिक सभ्यता में गाय का ये महत्व होता है। केवल अगर हम गाय की रक्षा करेंगे तो मनुष्य समाज में भगवान की कृपा होगी, सारी जो आवश्यक चीजें हैं वो मनुष्य को प्राप्त हो सकती हैं। ये आजकल के आधुनिक मन और बुद्धि को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि केवल गाय की रक्षा करने से सारे धन हमें मिल जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि नंद बाबा और माता यशोदा के उदाहरण से कितना धन उत्पन्न हो सकता है केवल गाय की रक्षा करने मात्र से ही। तो इस तरह से सारे गोपियां भी अपने आप को सजा धजा कर आईं, फूलों की माला पहने थे, नाना प्रकार के सोने के हीरे मोते के गहने पहने थे और सब धीरे धीरे जल्दी जल्दी से सब नंद बाबा की ओर घर की ओर चल रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी इस दृश्य का सुंदर वर्णन करते हैं कि अलग अलग गोकुल की जगह से जो सारे गोप गोपियां जा रही होती हैं नंद बाबा के घर की तरह उनके फूल माला से अलंकृत, तो जल्दी जल्दी में फूल गिर पड़ते हैं उनकी मालाओं से और ऐसे लगता है कि सारे गोकुल में फूलों की वर्षा हो रही है। और इस तरह से सारे गोप गोपियां जो हैं वो आगे वहां चली गईं। नंद बाबा के घर में आए तो वहां उन्होंने देखा कि इतने सारे ब्राह्मण वहां वेद पाठ कर रहे हैं, पुराणों का पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और अन्य जो ज्योतिष और ब्राह्मण हैं वो कोई संस्कार कर रहे हैं बालकृष्ण के लिए। और इस सुंदर दृश्य को देखकर सारे गोप गोपियां बड़े प्रसन्न हुए। उधर नंद बाबा ने अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था, प्लास्टिक से नहीं, जैसे आज हम लोग सजाते हैं। आजकल का धन क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बकेट्स, बाल्टियां, प्लास्टिक के मग, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के प्लेट, सब प्लास्टिक का। ये हमारी प्रगति है। लेकिन पुराने जमाने में सब कुछ इतना हुआ करता था केवल गोरक्षा से कि साधारण व्यक्ति के पास भी सोने के थालियां प्लेट हुआ करते थे, सोने के प्लेट में खाते थे। आजकल ग्राम ग्राम सोने के लिए एक भागदौड़ होती है, कितना महंगा हो गया है। लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो नंद बाबा का धन जो है वो इतना था कि सभी लोग इसको देखकर चकाचौंध रह गए। सारे हरे गाय को उन्होंने सुंदर सोने के आभूषण लगाए, फूलों की माला लगाई, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े लगाए जिसमें जरी वगैरह थे, और इस प्रकार से जो लाखों ऊपर लाख उनके गाय थे, प्रत्येक गाय को उन्होंने ऐसे आभूषण और कपड़े पहनाए और फूल माला पहनाई। और यशोदा माता और अन्य गोपियों ने सारे गायों को और गाय के बछड़ों को हल्दी तेल इत्यादि इसका लेप बनाकर उनको लगाया। इस तरह से गायों की रक्षा बहुत अच्छी तरह से करते थे। ब्रजवासियों का प्राण धन ही सब गाय थे, वो गाय के बिना रह नहीं सकते थे। और अब कृष्ण आए जो गोपाल गोविंद हैं, गोकुलपति हैं, वो भी गायों को बहुत प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बताया जाता है कि कृष्ण भगवान को ब्राह्मण और गाय बहुत प्रिय होते हैं, और नंद बाबा के घर में दोनों ब्राह्मण भी थे गाय भी थे, और नाना प्रकार के झंडे और नाना प्रकार के और अलंकार जो है वो सब जगह पे थे। अलग अलग पवित्र और शुभ वृक्षों के पत्ते जो है पन्ने सब जगह लगे हुए थे, जैसे आम अश्वत्थ पीपल इत्यादि। तो इस प्रकार से प्रकृति में जो भी बहुत ही उदार हृदय से दिया था, उन सब चीजों को लेकर नंद बाबा ने अपने घर को सजाया। देखिए, केवल फूल से सजाने से वातावरण कितना रम्य हो जाता है। प्रकृति या प्रकृति निसर्ग हमें सब कुछ दे सकती है हमारे सुख शांति के लिए। हमें बड़े बड़े नट बोल्ट फैक्ट्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल अगर प्रकृति के ऊपर निर्भर रहकर भगवान के नाम का जप कीर्तन कथा का श्रवण कीर्तन करते हुए अगर हम जीवन को बिताएंगे तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो प्रकृति के सारे उत्पादन को लेकर नंद महाराज ने अपने घर को अपने आंगन को सजाया हुआ था, और सारे गोप गोपियां वहां पर आई और अपने गीत गाने लगे भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में। और इस प्रकार से बहुत रम्य मधुर वातावरण हुआ वहां पर, और सारे गोपियों ने खेल खेलना शुरू किया। पहले तो उन्होंने चंदन और फिर हल्दी तेल इत्यादि मिलाया, कृष्ण भगवान के ऊपर लेप लगाया, मंत्रों का उच्चारण किया और कृष्ण भगवान को आशीर्वाद दिया, चिरपाही कि आप लंबे उम्र जियो और लंबे उम्र हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा के लिए ही यहां पर प्रकट हुए हो। और जब गोपियों ने ऐसे किया तो उन्होंने जो दही है, हल्दी का पेस्ट था, लेप था, वो भी सब जगह फेंकने लगे, एक दूसरे के ऊपर भी लगाने लगे। जब गोपों ने ये देखा कि गोपियां क्या कर रही हैं, तो उनको भी उत्साह आया ऐसे क्रीड़ा करने की, तो उन्होंने भी दही लिया, मक्खन लिया और एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, और एक दूसरे के ऊपर लगाने लगे जैसे होली के समय में होता है। और इस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा माता इस क्रीड़ा को देख रहे थे, हर्ष उल्लास मना रहे थे। वहां पर कोई दही मक्खन दूध की कमी नहीं थी। आजकल शुद्ध गाय का घी मिलना भी बहुत मुश्किल है। वहां पर इन चीजों की कोई कमी नहीं थी। अपने घर में तो बहुत होता था, साथ साथ सारे गांव को खिला पिला सकते थे। और इतना ही नहीं, इस मक्खन को, घी को, दूध को देकर इसके बदले में और सारे पदार्थ ले सकते थे। और इतना ही नहीं, इतना दूध और मक्खन बच जाता था कि वो एक दूसरे के ऊपर फेंक कर ऐसे क्रीड़ा कर सकते थे जैसे कि होली में एक दूसरे के ऊपर लोग रंग डालकर आनंद लेते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं वहां होने लगी। और इस ऐश्वर्य को देखकर सारे देवी देवता भी प्रसन्न हुए। बादलों के पीछे आकर देख रहे थे कि कृष्ण का जन्म दिवस कैसे मनाया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि वैसे भी नंद महाराज शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो उनके घर में हर प्रकार का ऐश्वर्य तो होना ही था, परंतु अभी साक्षात नारायण श्री हरि श्री कृष्ण उनके घर में प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी को तो आना ही था साथ। जहां प्रभु राम है वहां सीता देवी होंगी, जहां प्रभु श्री नारायण है वहां लक्ष्मी देवी आएंगी। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए तो नंद बाबा का घर जो है वो भी लक्ष्मी देवी का निवास स्थान हो गया। और जहां लक्ष्मी देवी निवास करती हैं तो वहां किस चीज की कमी हो सकती है, कौन से ऐश्वर्य की कमी हो सकती है। हम देखते हैं कि संसार में लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करने के बहुत इच्छुक होते हैं, क्योंकि वो धन चाहते हैं। सोचते हैं कि लक्ष्मी देवी को हम प्रसन्न करेंगे तो लक्ष्मी देवी हमारे ऊपर कृपा करके धन बरसाएंगी और इस प्रकार से हम संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। लेकिन सत्य बात तो यह है कि अगर हमें लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले नारायण को प्रसन्न करना होगा। अगर हम पति को प्रसन्न करें, पति हमारे ऊपर खुश हो, तो पत्नी खुद ब खुद खुश हो जाती है। अगर केवल हम किसी के पत्नी की सेवा करना चाहें, पति को देखे नहीं, तो ये ठीक नहीं है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति श्री हरि या श्री कृष्ण की सेवा करता है उसके ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा तो खुद ब खुद आ ही जाती है। उसे अलग से लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पे सदा निवास करती हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताए श्रीमद् भागवत में कि लक्ष्मी देवी ने आकर वहां निवास करना शुरू कर दिया और वहां पर हर प्रकार के ऐश्वर्य वहां आने लगे उस घर में, और कृष्ण भगवान ने अपनी लीला आरंभ की। तो देखिए, ब्रजवासियों के पास कोई बड़ी बड़ी चीज, मोटर गाड़ियां नहीं थी, उनके पास में टेलीविजन रेडियो नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, उनके समाज में कोई सैटेलाइट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास सब कुछ था, क्योंकि उनके पास कृष्ण थे, उनके पास भूमि थी कृषि के लिए, और उनके पास गाय थे, बस। और क्या चाहिए हमें, यही जीवन है वास्तव में, यही सुखी जीवन है। लेकिन आजकल के आधुनिक समाज में हमने इन तीनों चीजों को छोड़ दिया है। भगवान को तो त्याग तो दिया ही है, जो धार्मिकता का पालन करते भी हैं तो थोड़ा बहुत बनावटी हो जाता है, केवल करने के लिए कर लेते हैं। और भूमि है, भूमि को छोड़कर, गांवों को छोड़कर सब लोग शहर में जाते हैं। और जहां तक गाय का सवाल है, इसका क्या कहना है, गो हत्या तो इतनी बढ़ रही है। जो भी सुसंस्कृत परिवार से आते हैं, जिनमें अच्छे आदतें होती हैं, वो लोग भी आजकल शाकाहारी से मांसाहारी बन गए हैं, और आजकल गो हत्या भी इतनी बढ़ गई है। अच्छे अच्छे परिवार के लोग भी गाय का मांस खाते हैं, तो इसलिए समाज में इतना उत्पात है। तो पहले जमाने के जो गांव में रहने वाले लोग हुआ करते थे, जैसे गोकुल के लोग, गोकुल के निवासी, ब्रजवासी, और आजकल के गांव के निवासी में कितना अंतर है देखिए। नंद बाबा जैसे साधारण एक गोकुल के निवासी के लिए कि घर में इतना धन था, लेकिन आजकल किसी साधारण गांव में रहने वाले व्यक्ति के घर में कितना धन होता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यह है अंतर इतिहास के भारत का और आधुनिक काल के भारत का। कई बार हमने लॉरी के ऊपर एक कहावत पढ़ी है, मेरा भारत महान है। इसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन है, मेरा भारत महान था, अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसी देश की संस्कृति को त्याग दिया है, भगवान को त्यागा है, भूमि और कृषि को त्यागा है, और गो माता को त्यागा है। तो क्या रह गया हमारे संस्कृति में? केवल पाश्चात्य देशों की नकल रह गई। और देखते हैं कि इसलिए समाज में इतनी अशांति है, इतना उत्पात है, हर आदमी दुखी है अपने जीवन से, कोई अपनी जगह में संतुष्ट नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मैं और प्राप्त करूं। अभी आजकल हम सब जगह देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं इनको मत दीजिए, उनको मत दीजिए, वोट उनको दीजिए, वोट उनको दीजिए। लेकिन हमें वोट वास्तव में देना चाहिए श्री कृष्ण को, वही एकमात्र हमारे पालन पोषण करने वाले हैं, वही एकमात्र सारे ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाले हैं, संभालने वाले तो वही है। तो आजकल हमारी हर समाज के हर एक क्षेत्र में सारे चीजों का पतन हो गया है, केवल इसलिए कि हम इन तीन चीजों को भूल गए हैं, गोमाता, भूमि और भगवान। लेकिन गोकुल वृंदावन में ऐसे नहीं था, इसलिए इतना ऐश्वर्य था। तो कृष्ण भगवान को सारे ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे। बताया जाता है कि जो अन्य गोपियां और गोप थे, वो कृष्ण को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम किया करते थे। और सारे जो गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं, वो ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब सुंदर और अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया, तो उस समय वो सोचते थे कि ये श्री नारायण की कृपा मेरे बालक के ऊपर आई, कृष्ण के ऊपर आई। ये नहीं जानते थे कि नारायण के ही उगम स्थान यही श्री कृष्ण है, जिनको हम अपना छोटा बालक बच्चा समझते हैं। ब्रजवासी समझते थे कि अगर इस बाल कृष्ण की रक्षा हम नहीं करेंगे तो ये बेचारा मर जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी, असुर आ रहे हैं इतने सारे, बहुत खतरा है कृष्ण के लिए। तो उसको संभालते थे, नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते थे, संरक्षण के लिए सारे क्रियाएं करते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे। तो इस प्रकार से अपने तीव्र वात्सल्य प्रेम के द्वारा सारे ब्रजवासी ये सोचते थे कि हमें कृष्ण की रक्षा करनी है, हमें भगवान की रक्षा करनी है। देखिए कितनी सुंदर भावना है। इस भावना का एक कण भी अगर हमारे हृदय में मिल जाए, हमें प्राप्त हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वैसे भगवान की सेवा करने के लिए कई प्रकार के भाव हो सकते हैं। कोई लोग भगवान को अपना प्रभु मानते हैं और अपने आप को भगवान के दास, कोई लोग भगवान को ऐसे ऐश्वर्य रूप से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान से डरते हैं। लेकिन ब्रजवासियों को ऐसी ऐश्वर्यशाली आराधना से, ऐसे भगवान के भय से कोई लेना देना नहीं था। उनके हृदय में जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए था, वो केवल शुद्ध प्रेम था, जिसमें कोई ऐश्वर्य की भावना नहीं थी, जिसमें कोई लेन देन की भावना नहीं थी। वो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते थे और इसे भक्ति कहते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे तो साधारण बालक की तरह करते थे, इसलिए सारे ब्रजवासीगण यही सोचते थे कि ये दूसरे बालकों की तरह बालक है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनिगण भी इस बालक को अनादिकाल से पूजते आए हैं। एक स्वामी हैं, एक बड़े भक्त हैं, जिन्होंने सुंदर श्लोक लिखा है। वो कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भावभीताः अहम् इव नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परम ब्रह्म। वो कहते हैं कि कोई लोग ऐसे हैं जो संसार से डरते हैं। प्राय सभी लोग संसार भवभीताः, इस भव सागर से डरते हैं, क्योंकि ये संसार में बहुत कष्ट है। और इस डर को मिटाने के लिए कोई लोग ऐसे हैं जो श्रुतियों का पाठ करते हैं, उपनिषद इत्यादि। श्रुति श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे, कोई ऐसे हैं जो गीता भागवत महाभारत का पाठ करते हैं संसार के डर से, कोई ऐसे हैं जो महाभारत पढ़ते हैं। लेकिन ये भक्त बताते हैं कि उनको अपनी पूजा करने दीजिए, मैं तो केवल नंद महाराज की उपासना करता हूं, नंद बाबा की पूजा करता हूं, जिसके आंगन में परम ब्रह्म साक्षात श्री हरि बालक के रूप में वहां अपने घुटनों में चल रहे हैं, एक साधारण बालक की तरह है। कभी माखन चुराते हैं, कभी गाय के बछड़ों के पूंछ खींचते हैं, कभी बंदरों की नकल करते हैं, कभी मटकों को तोड़ देते हैं, कभी मिट्टी खाते हैं, तो कभी झूठ बोलते हैं, तो कभी वृक्षों को गिराते हैं, तो कभी बड़े बड़े असुरों का वध करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण, जिससे मूर्तिमान भय भी भयभीत होता है, जिनके डर से बड़े बड़े देवी देवता भी अपना काम करते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, बड़े बड़े असुरों का वध जिस भगवान ने किया, जो भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उगम स्थान है, स्वामी है, नायक है, जो हमेशा अपने धाम में रहते हैं, वही भगवान आज नंद बाबा के आंगन में आकर एक साधारण शिशु की तरह लीला कर रहा है। ये कितनी अद्भुत बात है। तो इसलिए ये भागवत धर्म जो है, ये श्रीमद् भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, इनमें बहुत मिठास है, बहुत माधुर्य है। इसलिए गोकुल का वातावरण इतना रम्य हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे लीला करते थे तो साधारण बालक की तरह भी भयभीत होते थे। जब वो माखन चुराया करते थे और सारे गोप गोपियां जाकर माता यशोदा से शिकायत करती कि देखो तो तुम्हारा कृष्ण कितना नटखट है, आके हमारे एक घर में माखन चोरी कर लेता है, मटके तोड़ देता है, और जब हम उसको पकड़ते हैं और डांटते हैं कि अरे कृष्ण तुमने माखन चोरी क्यों किया, तो जबकि उसके मुख से माखन गिर रहा होता है, वो कहता है मेरे घर में क्या माखन की कमी है कि मैं आपके घर में आके चोरी करूं, और अभी देखो आपके साथ में बैठा है कि कितना अच्छा बालक, मान लो कितना मासूम चेहरा लेकर बैठा है कि उसे पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो माता यशोदा ऐसे बार बार शिकायत आने के बाद में हैरान हो जाती और कहती है कि कृष्ण को भी मैं छड़ी से पीटूंगी। तो उस समय सारे गोपियां कहती, नहीं नहीं नहीं, अभी पीटो मत, हमें वास्तव में अच्छा लगता है, हम तो शिकायत करने आए थे आपके पास में, लेकिन क्या है कि जब कृष्ण आता है और ऐसी लीला करते हैं हमारे घर में तो हमें अच्छा लगता है। वास्तव में यही बात थी सारे ब्रजवासियों के हृदय में, दिन रात केवल कृष्ण का स्मरण करते थे। जब कृष्ण वन में चले जाते थे तो कृष्ण के बारे में विरह में सोचते रहते थे कि कृष्ण कब आ जाएगा। इस तरह से कृष्ण ने सारे उनके ब्रजवासी भक्तों का मन हरण कर लिया। इसलिए हरि शब्द का अर्थ यही होता है। हरि शब्द का अर्थ होता है सर्व अमंगल हरे, जो सारे अमंगल चीजों का हरण कर लेते हैं उनको हरि कहते हैं। और प्रेम दिया मन हरि, जब अमंगल चीजों का हरण कर लेते हैं तो हमारे हृदय में उनके प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह से वही साक्षात श्री हरि नंद महाराज के घर में एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हुए और नंद बाबा और यशोदा माता ने बड़े धूमधाम से ये नंदोत्सव का जो त्योहार है वो मनाया। नंदोत्सव इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि नंद महाराज ने ये जात कर्म किए, माता देवकी और वसुदेव को ये सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि जैसे ही कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे मथुरा के कारागार में, तुरंत नंद महाराज को बाल कृष्ण को उठाकर गोकुल में ले जाना पड़ा। इसलिए वसुदेव और देवकी ने कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का आनंद नहीं लिया, वो इस आनंद का आस्वादन नहीं कर पाए। वासुदेव और देवकी वास्तव में अपने पिछले जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे और उसके बाद के जन्म में अदिति और कश्यप, और इन दोनों जन्मों में भगवान उनके पुत्र के रूप में आए थे और इस बार भी भगवान साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण उनके पुत्र बनकर आए। प्रश्नी और सुतपा ने प्रार्थना की थी भगवान से कड़ी तपस्या करने के पश्चात कि हमारी इच्छा है कि आप हमारे पुत्र बनो, और भगवान ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। उधर यशोदा और देवकी कौन थे, वो अपने पिछले जन्म में द्रोण और धर नाम के प्रजापति थे और उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी, भगवान प्रसन्न हुए थे। तो जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना मांगी कि हम आपके बाल लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं, इन बाल लीलाओं के अमृत का पान हम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वसुदेव और देवकी की इच्छा पूरी हुई कि भगवान उनके पुत्र के रूप में आने वाले हैं, और उधर यशोदा माता और नंद बाबा की भी इच्छा पूरी हुई। कृष्ण का जन्म हुआ देवकी से जेल के अंदर मथुरा में, और बाल लीलाओं का आस्वादन किया यशोदा माता और नंद महाराज ने। तो वसुदेव और देवकी को यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के जात कर्म का संस्कार वो करें। इस संस्कार के बाद में जब नंद महाराज वसुदेव को मिलने मथुरा में गए थे तो उस समय वसुदेव ने इस बात को नहीं बताया कि वास्तव में बलराम तो मेरा पुत्र है ही, लेकिन कृष्ण भी मेरा पुत्र है। वो वास्तव में कृष्ण और बलराम दोनों देवकी के पुत्र हैं। नंद महाराज केवल यही जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि रोहिणी देवी जो कि बलराम की माता है वो वसुदेव की पत्नी है। लेकिन वो सोचते थे कि जो ये कृष्ण है ये तो मेरा बच्चा है, यशोदा का बच्चा है। तो वसुदेव ने ये नहीं बताया कि मैंने यमुना पार करके यशोदा माता यशोदा देवी के पास में कृष्ण को रखा और योग माया को मैं लेकर गया। तो ये सुंदर लीलाएं हुई और फिर कृष्ण भगवान ने 10 साल तक करीब गोकुल में, वृंदावन में और नंदग्राम में लीलाएं किए, और उनके बाद में वो मथुरा चले गए। मथुरा में 28 साल की आयु तक उन्होंने लीलाएं की और फिर वहां से वो द्वारका चले गए, और द्वारका में 125 साल की उम्र तक कृष्ण भगवान वहां रहे। इस बीच उन्होंने कई सुंदर लीलाएं की द्वारका में भी और अलग अलग जगह में, और जो विशेष लीला उन्होंने की थी वो है कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर, जब उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो 125 साल रहकर भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हुए, अपने धाम में लौट कर गए, लेकिन उन्होंने पीछे एक ग्रंथ छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत का प्रवचन जब चल रहा था तो उस समय ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, ये बताइए कि कृष्ण भगवान जब अपने धाम चले गए 125 साल यहां लीला प्रकट करने के पश्चात, तो यहां अभी धर्म का पालन कौन करेगा? कृष्ण भगवान ने तो वचन दिया था कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म संस्थापना था यह संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण भगवान तो चले गए हैं, तो अभी धर्म का क्या होगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म में मार्गदर्शन लोगों को कौन देगा? तो उस समय सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। वो कहने लगे कि कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में लौट कर गए, तो उस समय ज्ञान धर्म इत्यादि के सिद्धांतों को तो ले गए, लेकिन वो एक चीज अवश्य छोड़कर गए, और वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत का ग्रंथ, जो कि पुराण आर्कः अधुना उदितः। ये पुराण जो है श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम, ये अर्कः अर्थात सूरज के समान है। अधुना उदितः, अभी अभी इस भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है, क्योंकि अभी अभी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनियों के उपस्थिति में यह उपदेश दिया है, जिस उपदेश का श्रवण करने से हृदय में अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्रेम और भक्ति जागृत हो जाती है। तो अभी अभी यह सूर्य भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है, और यही भागवत ग्रंथ जो है कलयुग के लोगों के लिए मार्गदर्शन मार्ग दिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा। और इसी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण भगवान के उपदेश का वर्णन है, कृष्ण भगवान के महान भक्तों के लीलाओं का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण कीर्तन अध्ययन करने से हमें ज्ञान मिल जाता है कि कैसे हम भगवान के योजना के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, जीवन यापन करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो बार बार सत्संग में आए, इस श्रवण कीर्तन के सरल और सुलभ मार्ग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। महाभारत में बताया हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभि समानः, कि पशुओं में और मनुष्य में चार कार्य होते हैं जो एक समान होते हैं, वो है आहार निद्रा भय और मैथुन। सामान्य मेतत पशुभि नराणाम, पशु में और नर में दोनों एक समान होते हैं, लेकिन मनुष्य जाति में मनुष्य योनि में एक विशेष बात है, और वो क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म जो कि केवल मनुष्य इसका पालन कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। और धर्महीन पशु भी समानाः, और जो व्यक्ति धर्महीन होता है वो भला इतना संसार में बड़ा आदमी क्यों ना हो, धनी आदमी हो, कौन से भी पद में क्यों ना हो, भले वो राजा भी क्यों ना हो, कितना भी यशस्वी क्यों ना हो ये संसार की दृष्टि से, लेकिन अगर वो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वो पशु कहलाता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया हुआ है कि हमें सत्संग में बार बार आते रहना चाहिए। ये सत्संग की महिमा का वर्णन शास्त्रों में हर जगह किया हुआ है, शास्त्रों ये सत्संग का की महिमा इतनी है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिषः। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि संसार से मुक्ति प्राप्त करना, स्वर्गलोक की प्राप्ति करना, ये सारे चीजों जो हैं ये बिल्कुल तृण के बराबर हैं सत्संग के सामने। तो फिर भगवान की भक्ति जो कि सत्संग से प्राप्त हो सकती है वो कितनी महान चीज होगी। तुल्याम लवेण अपि, एक लव मात्र भक्तों का संग अगर करेंगे तो वो संसार से मुक्ति से भी बड़ा है, स्वर्गलोक के प्राप्ति से भी बड़ा है, केवल एक क्षण भक्तों का संग करने से। साधु संग सर्व शास्त्र कोए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं कि भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो, भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन किया करो भगवान के बारे में, न कि केवल टेलीविजन के सामने बैठकर सिनेमा देखें या अखबार पढ़ें। मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि हम भगवान के बारे में जानें, हम कौन हैं, भगवान कौन हैं, हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, वास्तविक दिव्य आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ने हमें यह मनुष्य देह दिया है। मनुष्य देह में ऐसे सद्बुद्धि उपलब्ध है जिससे कि हम ऐसे प्रवचन बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि को हमने केवल भौतिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया तो ये सारे हमारा मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ समझा जाता है। कर रहे हैं भगवान, वहां पर शाश्वत जीवन है, वहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न बीमारी, न कोई संकट और क्लेश। इसलिए भगवान के धाम को वैकुंठ कहते हैं, जहां कोई कुंठ नहीं हो। कुंठ अर्थात संकट, कष्ट। भौतिक जगत को कुंठ कहते हैं, कुंठों से पूर्ण ये जगत है। दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन भगवान का धाम है वैकुंठ। तो भगवान अवतार लेते हैं हमें उनके धाम के प्रति आकर्षित करने के लिए, हमें ये संदेश देने के लिए कि देखो संसार के भोग में तुम बहुत रम गए हो, रमण कर रहे हो, लेकिन ये जड़ आनंद है। इस जड़ आनंद में कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, ये केवल दुख का ही कारण है। इसलिए तुम मेरे पास चले आओ, मैं सुंदर सुंदर लीलाएं बता रहा हूं यहां पर केवल तुम्हें मेरे पास ले आने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि मेरा धाम कितना सुंदर है, मेरे संग प्राप्त करने का क्या सुंदर लाभ मिलेगा तुम्हें। तो अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को गौर से ध्यान से सुना और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास किया तो कृष्ण भगवान के यहां अवतार लेने का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। अन्यथा कृष्ण भगवान की जो लीला है वो तो बस वैसे की वैसे रह जाएगी। थोड़े बहुत भक्त भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन करके, उनके नाम का उच्चारण करके धाम में चले जाएंगे और बाकी सब यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में जन्म पड़े रहेंगे। इसलिए बताया जाता है कि हमेशा हमें भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से आपके सेवा में लगाइए ताकि इस भव बंधन से हम मुक्त हो जाए। जब तक हम ये भव बंधन में हैं तो बारंबार हमें जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मरना पड़ता है, बारंबार संसार के भव रोग का कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बताया हुआ है शास्त्रों में, पुनरपि जननम पुनरपि जननम मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कि हे मुरारी, हे कृष्ण, मुर नाम के असुर के शत्रु, मेरी रक्षा करना इस संसार में, संसार से मुक्त करा देना। क्योंकि ये संसार में क्या है, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मर जाना, बारंबार मां के गर्भ में 9 महीने तक रहना, और ये चक्कर जो है चलता रहता है, चलता रहता है। वास्तव में ये संसार कितना विचित्र स्थान है, यहां तो केवल दुख ही दुख है। विचित्र बात यह है, अद्भुत बात यह है कि इतना संकट में रहते हुए भी, इतने दुखमय सागर में रहते हुए भी यहां के लोग सोचते हैं कि मैं कितना सुखी हूं। भागवत में बताया जाता है कि मनुष्य में और पशु में यह एक अंतर होता है कि मनुष्य जो है अपने जगह में रहकर सोचता है कि मैं कितना सुखी हूं, और इसलिए भगवान की ओर देखता नहीं है, मुड़ता नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं इसका परिणाम सारे समाज में। तो इस अवसर पर नंदोत्सव के दिन, जन्माष्टमी के एक दिवस उपरांत, हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में आध्यात्मिक जीवन में के आमे आगे बढ़ने की जो लालसा है वो जागृत कराइए, किसी न किसी प्रकार से भक्तों के संग के लिए हमारे हृदय में आकर्षण पैदा करा दीजिए, आपके चरण कमलों के प्रति हमारे हृदय में भक्ति पैदा करा दीजिए, आपके नाम का उच्चारण करने के लिए हमें हृदय में प्रेरणा दीजिए, और इस प्रकार से हम हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। इस कलयुग में जो कि एक दोषों का सागर है, जहां इतने सारे कठिनाइयां हैं, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बड़ा आसान बना दिया है भगवान ने। केवल उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही हम सारे सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त मुक्त संघ परम व्रजेत। पर सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हे राजन, ये कलयुग दोषों का सागर होते हुए भी अस्ति ही एक महान गुण है, इसमें एक महान गुण है, और वो क्या है? वो गुण ये है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल श्री हरि श्री कृष्ण का कीर्तन करने से, के नामों का कीर्तन करने से मुक्त संगह, ये सारे संसार से विरक्ति की भावना होगी, परम व्रजेत, और भगवान के धाम में हम लौट कर जा पाएंगे। तो देखिए कितना सरल है उपाय, कोई भी भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, शिक्षित भी कर सकता है, अशिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है, भारतीय कर सकता है, रूस देश का कर सकता है, जापानी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो भगवान इतने कृपालु हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुगों के लोग जो है इतने मंद बुद्धि वाले हैं कि उनको आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल रुचि है ही नहीं। जैसे कोई परीक्षा में अध्यापक देखे कि मेरे जो विद्यार्थी हैं इतने मंद बुद्धि के हैं कि पास मार्क जो है मुझे 5 नंबर बनाने चाहिए 10-100 में से, नहीं तो ये पास ही नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से भगवान ने बड़ी कृपा करके कलयुग के लोगों के ऊपर भगवत साक्षात्कार का मार्ग इतना सरल बना दिया है। जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, संस्कृत विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों के संग में आकर श्री हरि के लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए और उनके पवित्र नामों का सदा जाप और कीर्तन करना चाहिए। और विशेष करके ये हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग में बहुत महत्व रखता है, ये कली संतरण उपनिषद में बताया हुआ है, इसलिए इस महामंत्र का विशेष करके हमें जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आपका कीमती समय निकालकर आप यहाँ सत्संग में आए, इतनी ध्यान से आपने ये प्रवचन सुना। आशा रखते हैं कि आप इस भक्ति मार्ग को बहुत गंभीरता से स्वीकार करेंगे। आप सबसे नम्र निवेदन यही है कि आप ऐसे सत्संग में आते रहिएगा, मनुष्य जीवन के सुअवसर को गंवाइएगा मत, इसको बहुत गंभीरता से लीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।